पकड़ते हैं पकड़ते हैं। इन पे भी चर्चा करेंगे। एक बात और रह गई, खुशनुमा चेहरा। शुरू यहाँ से किया था, दी हुई चीज वापिस नहीं ली जाती। और एक सुंदर बात रह गई, मेरा बाबा अपनापन मेरापन बढ़ाओ तो क्या होगा, याद सहज हो जाएगी। तो ऐसे तो एक एक बात ही एक एक क्लास के लिए है, एक एक बात पे एक एक क्लास हो जाए अच्छी। पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें करनी है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ उसका ही होता है जो पुरुषार्थ की सुंदर प्लानिंग करते हैं। जिनके पास पुरुषार्थ की कोई प्लानिंग नहीं है उनका पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है बात। मनुष्य हर चीज की प्लानिंग करता है। आप यहाँ क्लास में भी आए, एक घंटे पहले से प्लानिंग की होगी ना, भाई जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे, हैं कोई काम हो पहले कर लेते हैं, कहीं थोड़ा बहुत जाना हो इधर उधर होके क्लास में चलेंगे। अगर प्लानिंग ही ना हो और केवल संकल्प हो के क्लास में चलेंगे तो कब पहुंचेंगे, जब क्लास पूरी हो गई होगी। भाई पानी मंगा देना जरा, पानी भी। तो प्लानिंग के बिना पुरुषार्थ की रफ्तार तेज नहीं होती। क्या प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बिना उमंग उत्साह भी सदा कायम नहीं रहती। लक्ष्य के बिना उमंग उत्साह नहीं हो सकती। किसी को लक्ष्य हो मुझे एक हफ्ते में अपने योग के चार्ट को इतना करना है, करना है ऑन एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए करना है, तो क्या करेंगे, लगन बढ़ जाएगी, प्लानिंग भी करेंगे और लगन भी बहुत बढ़ जाएगी, करना है। हम लोग शुरू में ऐसा ही किया करते थे, बाबा ने रेस कराई, यही जगह थी और ये हॉल बना भी नहीं था, रेस कराते थे बाबा, सिखाते थे घूमने जाओ दो रेस करो, कौन कितना ज्यादा याद में रहेंगे। केवल घूमने नहीं जा रहे, याद का कंपटीशन कर रहे हैं। आज योग इतना करना है, नहीं किया तो रात को जाग के करेंगे, उमंग रहती थी। लक्ष्य, लक्ष्य को पाने का समय और लक्ष्य को पाने की प्लानिंग ही उन्नति का आधार, उमंग उत्साह का आधार है। और प्लानिंग हम दें बाबा दे वो सदा नहीं चलेगी। कौन सी प्लानिंग सदा चलेगी, जो हम खुद बनाएंगे, क्योंकि हम अपने को पूरी तरह जानते हैं, दूसरा हमें नहीं जान सकता। हम अपने को जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हम कितने बजे उठ सकते हैं सवेरे, हम 2 बजे उठेंगे तो सारा दिन काम चलेगा या नहीं चलेगा, या हम थके थके रहेंगे या हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम 4 बजे उठेंगे तो कैसा रहेगा। हर व्यक्ति स्वयं को स्वयं जानता है ना, इसलिए क्या करना है, क्या करना है, प्लानिंग बनानी है, बनानी है। आज न बनाई हो तो बना लें, बनानी है, बनानी है, क्योंकि मुरलियों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा, हमने सुना, बहुत प्यार मिला, वाह वाह हुआ और फिर पूरा हो गया 1-2 दिन में, ये नहीं, पुरुषार्थ में वाह वाह हो जाए, वाह मेरा पुरुषार्थ, मैं इसमें जोड़ता हूँ, वाह बच्चे, वाह बाबा, वाह मेरा पुरुषार्थ, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी स्पीड, वाह मेरी लगन, इन सब के साथ में वाह मेरी तकदीर, इनके साथ भी वाह वाह जोड़ दें। तो सभी को श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करनी है। पुरुषार्थी 4 तरह के होते हैं हमारे बीच में। देखो किसी भी क्लास में 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं, लौकिक में भी, फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास में और क्या होंगे, मेरिट वाले, टॉप करने वाले, एक टॉप करने वाला, दो तीन और होंगे बराबर वाले, मेरिट वाले। फिर फर्स्ट क्लास होंगे, 50 की क्लास है तो 5, 7, 10 भी हो सकते हैं। बचे 40, 40 में 20 होंगे सेकंड क्लास। फिर बचे 20, 20 में 10 होंगे तीसरी डिवीजन, क्लास न कहें वो अच्छा नहीं लगता। और बाकी 5, 7 कैसे होंगे, बस वो भी न बोलो। तो जो टॉप क्लास पुरुषार्थी हैं, उन्हें लक्ष्य बनाना चाहिए। मैं मुझे पता नहीं कौन है आप में से, 2-4 को मैं जानता हूं यहां वालों को। जो मेरिट लिस्ट वाले हैं उन्हें बनाना चाहिए मुझे बाप समान और साक्षात्कार मूर्त और साक्षी दृष्टा हो जाना है। बाप समान श्रेष्ठ योगी, बाप समान सर्वश्रेष्ठ त्यागी, बाप समान संपूर्ण निरहंकारी, बाप समान सबके लिए सुखदाई, सबको आगे बढ़ाने वाले, सबको उमंग दिलाने वाले, बाप समान संपूर्ण पावन। ये टॉप मोस्ट स्टूडेंट जो हैं, उन्हें लक्ष्य बनाना है और इसकी प्लानिंग करनी है कि एक साल में हमें इसमें बहुत कुछ कर लेना है। और इसके लिए स्वमान रखना है, मैं बाप समान हूं। बनना है तो मंजिल लंबी दिखाई देगी। मैं बाप समान हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए, मेरी धारणाएं कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म करने की कला, अनासक्त वृत्ति, न्यारापन, प्यारापन, उपराम, बाबा की ये टॉप मोस्ट धारणाएं थी। इन पे कभी चर्चा होती नहीं है। उपराम, अनासक्त, निर्मोही, विदेही, ये टॉप मोस्ट स्थिति है अध्यात्म के, कि हम यहाँ कर्म में रहें, संसार में रहें और न्यारे कमल फूल समान, यहाँ की माया, यहाँ के कर्मों का प्रभाव, देह के संबंधों के बंधन हमें छू न पाए। अब फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी, आप खुद सोचेंगे आगे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को क्या करना है, बोलो। हाँ नहीं, थोड़ा इसे नीचे आ जाओ, तीव्र पुरुषार्थ, जो बाबा ने कहा वो करना, ऐसा सोच लें। योग का चार्ट 8 घंटे, ये फर्स्ट क्लास के लिए योग का चार्ट 8 घंटे, मैंपन और मेरेपन का बहुत बड़ा त्याग, निरहंकारी सरल चित्त संतुष्ट मणियां, इन पे काम करेंगे कर्म योग। सेकंड क्लास पुरुषार्थियों को 4 घंटे योग, अच्छी पवित्रता, संतोषजनक कर्म, श्रेष्ठ सुखदायी जीवन, नम्रता गुण ले लें कुछ। तीसरे वालों की भी तो धारणा होगी। तीसरे वाले 2 घंटे, 1 घंटा योग, मुरली सुनना, सेवा अच्छी करना, वो बहुत अच्छी बात है। सेकंड वालों की भी यही होगी, सेवा बहुत अच्छी करना, लगन से करना, जिम्मेदारी से करना, ऐसी जिम्मेदारी से करना कि हमारे पीछे किसी को देखने की जरूरत न पड़े कि हमने सेवा की या नहीं की, पूरी लगन के साथ। एक बात मुझे याद आ गई, हिस्ट्री हॉल में साकार में बाबा ने पूछा, दीदी बैठी थी, दीदी मनमोहिनी, दीदी राम सतयुग में आएगा, रात्रि क्लास में इस टाइम पूछ के। अब सब सोचने लगे क्योंकि उस टाइम ये मान्यता थी सतयुग में नहीं आएगा, त्रेता में ही आएगा। अगले दिन सवेरे की मुरली में बाबा ने उत्तर दिया, राम सतयुग में आएगा, लक्ष्मी नारायण का राम सीता, लक्ष्मी नारायण के फर्स्ट क्लास दास दासी होंगे। कहा तो आगे भी कुछ था पर वो मैं नहीं कहूंगा, कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है, पर वो भगवान हुआ अच्छा है, संपूर्ण सत्य है, लेकिन कुछ चीजें हमें जरा बोलनी नहीं होती, समय पे आप ही डिक्लेयर कर देता है बाबा उन चीजों को। फिर बाबा ने कहा राम फेल हो गया, किसमें किसमें? नहीं, योग में फेल, धारणाओं में फेल हो जाए तो राम कैसे बनेगा? राम भी तो विश्व महाराजन है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व महाराजन, उसकी प्रजा लक्ष्मी नारायण की प्रजा से 10 गुनी ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा शायद, 9 लाख, और तब होगी शुरू में 2 करोड़, बहुत ज्यादा हो गए ना। तो योग में कम नंबर रहे, फिर बाबा ने अव्यक्त में उत्तर दिया था, योग में 25%, योग और धारणाओं में, और भी धारणाएं है ना, गुणों की, निरंकारिता, संतुष्टता, इनमें कम, सेवा और ज्ञान में बहुत ज्यादा। सेवा बहुत की, ज्ञान भी बहुत सुनाया, लेकिन धारणाएं और योग में ढीले रह गए, वो राम के वंशज हो जाएंगे। हम सभी अब दूसरी धारणा ले लें, जिसको हमें बाबा की इस मुरली से अपने जीवन में अपना लेना है, अपना लेना है, बातों को पकड़ेंगे नहीं। बहुतों में आदत होती है, एक बार कोई बात हो गई उसको पकड़ के बैठे हैं, बहन जी से बात हो गई कुछ रूस के बैठे हैं, बहन जी माफी मांगे तब आएंगे सेंटर में। अब बहने महान हैं तो बेचारी झुक के माफी मांग लेती हैं, चल वही तू आ तो जा, हम माफी मांग लेंगे, हम तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। बातों को पकड़ना नहीं है, जो बातों को पकड़ते हैं वो एक तो बाप को भूल जाते हैं, बातों को पकड़ने वाले बाप को भूल जाते हैं, जो बातों में रहते हैं, जहां बातें हैं वहां क्या विचार है माताओं का? मैं विचार पूछ रहा हूं, क्या है विचार माताओं का? बातों में रहेंगे या नहीं? छूट जाता है। मैं देखा बाबा क्या दिन था कल, सवेरे सभी माताएं योग में आ रही हैं तो भी बात करते आ रही हैं, जा रही हैं योग हो गया तो भी बात करते जा रहे हैं। हमारे वहीं सामने माताओं के रूम हैं, जैसे यहाँ से वो दीवार, सवेरे सवेरे लड़ने की आवाज, जल्दी बाथरूम खोलो, कपड़े धो रही है अंदर, दरवाजा पीट रहे हैं माताएं, चारों ओर आवाज फैल रही है। भाइयों की तरफ ऐसा नहीं होता, फटाफट एक दूसरे को साथ देते हैं। माताओं को होता है सारे कपड़े धो के ही निकलूं बाहर, अब दिक्कत तो होगी ना बाहर वालों को। आगे हो जाओ भाई, आगे हो जाओ। तो बातों को पकड़कर नहीं बैठना है, एक बहुत सुंदर रहस्य है इसके पीछे। जो मनुष्य बातों को पकड़ के रखते हैं वो आने वाले सुंदर अवसरों को मिस कर देते हैं। मेरे पास 2-4 दिन पहले 2 माताओं के फोन आए, उनके बच्चों ने 12वीं में मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया। मेडिकल में जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए एग्जाम देते हैं, उनका नंबर नहीं आया, दोनों डिप्रेशन में चले गए। बन जाएंगे डॉक्टर? डिप्रेशन में जाके डॉक्टर बन गए? ये बहुतों के साथ हो रहा है, कई लोग बहुत नाजुक हो गए हैं। एक काया कनाडा से, उसका लड़का 2 बार एंट्रेंस में असफल हो गया है, 3री बार दे रहा है, माता को कह रहा अब के भी मैं अगर असफल हो गया, बस उसके शब्दों से ही लगता है या तो सुसाइड करेगा या जिंदा भी मरा रहेगा। ज्ञान वाले का हाल है ये, ज्ञान वाले कुमारों का। जीवन में एक सिंपल मेंटलिटी बनानी चाहिए सबको, संसार के सभी मनुष्यों के लिए ये बात है। जीवन का ऊंचा लक्ष्य बनाओ, उसके लिए बहुत मेहनत करो, और फिर जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो, उसमें कोई ना कोई कल्याण होता है। अभी मुझे मिला श्याम को, एक नीचे से परिवार आया था, लड़का बहुत होशियार, कहा मैथमेटिक्स में ये बहुत टॉप मोस्ट है, इंडिया में इसके नंबर आते हैं एग्जाम में, ग्यारहवीं में है, अब बारहवीं में जाके आईआईटी का एग्जाम दे रहा, लेकिन उसको डर लग रहा है। ये एक नई समस्या है आजकल, उसको एक निराशा मन में हो रही है, मेरा नंबर आएगा या नहीं। मैंने कहा तुम जब बहुत होशियार हो तो नंबर क्यों नहीं आएगा, और अगर तुम अभी से सोच रहे हो मेरा नंबर आएगा या नहीं तो नहीं आएगा। अभी से आप विश्वास जगा दो, मेरा सिलेक्शन निश्चित है। अगर टॉप मोस्ट स्टूडेंट का या आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा तो सेकंड वालों का होगा क्या, सेकंड क्लास वाले जाएंगे क्या वहां? तो हमारे अपने संकल्प कमजोर करते हैं मनुष्य को, इसलिए ये मैं उसी बात में बताई, बातों को पकड़ कर न रखें, घटनाओं के इफेक्ट को पकड़ के न रखें। सभी देख लें, भाई बैठे होंगे यहाँ, कल मुझे बता रहे थे माताओं को सिखाया करो, मैंने भी सीख ली अच्छी बात, घुटने दर्द जो माताओं को बहुत होता है। मैं भट्टियों में जब क्लास में हाथ उठवाता हूँ तो अगर 1000 माताएं बैठी हैं तो 500 हाथ उठाती हैं, कोई दोनों उठाती है कि दोनों घुटनों में है। तो उसने मुझे सिखाया, ये मानसिक दबाव के कारण होता है, इसलिए जिसने भी कोई गलती आपके लिए कर दी हो, जो आपको परेशान कर रही हो, उसे सच्चे मन से क्षमा कर दो, घुटने दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिनको भी हो कर दें, करेंगे या नहीं करेंगे, कईयों को ये होता है जब तक बदला ना लें सुख की नींद सोएंगे नहीं, चैन ही नहीं मिलेगी, शांति नहीं, योग ही नहीं लगता, बदला लें योग लग जाए। होता है, देखो आपको कोई 10 बुरी बात कह गया हो, मन डिस्टर्ब हो रहा हो, या तो वो आके कह दे आई एम सॉरी भाई गलती हो गई, फट से आपका मन शांत और योग लग जाएगा, या वो सामने आपके आ जाए और आप 10 की बजाय 20 सुना दो, कहेगा अब मजा आ गया, अब योग लगेगा, अच्छा अब लगा योग फर्स्ट क्लास। लेकिन ये साधारण बातें हैं तीसरे नंबर की, असली बात है महान आत्माओं को, उन सभी को क्षमा कर देना है जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया है। अपनों को क्षमा करो, किसी सास को बहू ने बहुत सताया है क्षमा कर दो, किसी को पति ने बहुत तंग किया है क्षमा कर दो, पत्नियों ने भी किया है उन्हें भी क्षमा कर दो। करेंगे? फिर पूछता हूँ, चित्त शांत, अनेक बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। समझ ले आप इसका रहस्य, केवल हंसाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मन पर जब किसी भी चीज का दबाव रहता है तो शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, हार्ट पर भी आएगा, शुगर भी बढ़ेगी। मन को फ्रेश कर दो सभी, इसलिए बाबा कहते हैं बातों को पकड़ कर नहीं बैठो। बहुतों ने पास्ट की बहुत बातें पकड़ी हुई हैं, पास्ट में कुछ भी हो गया है, यही नहीं किसी ने कुछ कहा है, पास्ट में कष्ट हो गया है बहुत इस जीवन में, उसकी छाया मस्तिष्क से जाती नहीं, ये बहुतों के साथ हो रहा है, हटाना है उसको। और किस संकल्प से हटाना है? पास्ट हमारा कितना भी भयानक हुआ हो, मैं ये शब्द यूज करता हूँ, सबसे खराब शब्द ये है ना, दुखों से भरा भयानक रहा हो, लेकिन अब कौन मिल गया? बोला ही नहीं, माताएं तो सोच रही, मिलाया नहीं, कौन मिल गया? बाबा। ऐसे कह रहे बाबा, कोई आदमी मिल गया, बाबा मिल गया, क्या मिला? सोच लो कौन मिला, जिसको मिलने के बाद जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है, जिसे देखने के बाद मन तृप्त हो जाता है। और हम तो करना चिंतन, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, बाबा ने मुझ पर क्या क्या उपकार किए, लिस्ट बनवाना छोटे लल भाई, 25 कम से कम, याद करते ही मन उसके प्यार में मग्न हो जाएगा। बहुत कुछ किया है उसने हम पर, और बहुत कुछ तो वो किया है जिसका हमें पता ही नहीं। हम जा रहे थे पैदल, एक कल्पना सुनो, हम पैदल जा रहे थे, रास्ते में भालू बैठा था, बाबा ने गेट से बाहर निकलते ही संकल्प दिया, अरे फलानी चीज तो भूल गई, उसको लेके आओ। हम कमरे तक गए, इतने में 10 मिनट निकल गया, भालू रास्ता छोड़ के चला गया। वो संकल्प किसने दिया था? बाबा ने दिया था। ऐसी अनेक घटनाएं बाबा के बच्चों के पास होती हैं कि वो विपदा, वो आपदा आने से पहले ही बाबा हमें बचा देता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता। हमें क्या पता था कि रास्ते में मौत खड़ी थी और वो टल गई। वो बैड टाइम था तुम्हारा, बाबा उसे पास कराना चाहता था, उसने पास करा दिया। तो बाबा के उपकारों को याद करके उसके प्यार में मगन। अगली बार याद दिलाना, ये क्लास कर लेंगे जरा। श्रेष्ठ बुद्धि दी उसने हमें, जीवन जीना सिखा दिया उसने हमें। आते ही कहा चिंता ना करो, क्या बैठा ही नहीं, खड़ा भी है हमारे पीछे, छत्र छाया बन गया है हमारे सिर पर, चिंताएं हर ली, कितनों का जीवन सुखी हो गया। माताएं सुनाती हैं, बाबा मिला, हम तो 20-20 गोली रोज खाते थे, ऐसी खुशी आई, गोली पहले दिन से छूट गई, पैसा बचा, जहर भी खाना बचा, जहर होता है ना, कितना बुरा लगता है 20 गोली खाओ, 10 सवेरे 10 शाम को। बहुत कुछ दिया बाबा ने, और सबसे बड़ी चीज दी अपनापन, जो कल बाबा ने कहा मेरा अपनापन बढ़ाएं बाबा से। ये बहुत सूक्ष्म बात है, मोटी नहीं, कि कह दिया मेरा बाबा और मेरे के लिए किया कुछ भी नहीं। सोचो माताएं, जिसको आप कहती हैं ये मेरा बच्चा है, उसके लिए क्या क्या करते हैं सारा दिन? अपने लिए नहीं करते, उसी के लिए करते हैं सारा दिन। और जिसको हम कह रहे हैं मेरा बाबा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? या केवल कहने तक सीमित रह गया है, या उसके लिए हम कुछ कर भी रहे हैं? अपनापन बढ़ाएंगे हम तो बाबा हमारी छत्र छाया बन जाएगा, बहुत प्यार प्राप्त होगा बाबा का हमें। कल की बात से मैं बताऊं, विदेशी है ना, बहुत विदेशी बैठे होंगे यहाँ, बहुत कई लोग बड़े सेंसिटिव हैं, कई प्रश्न पूछ के बाबा ने गुड नाइट क्यों की, कुछ गड़बड़ है, गुड नाइट क्यों की। इधर इंडियन लोग गुड नाइट सुन के आनंदित हो रहे हैं, भगवान ने गुड नाइट की, और कई लोग परेशान हो रहे, गुड नाइट क्यों कर दी, मतलब क्या होता है इसका, कहीं ऐसा तो नहीं, अभी मेरे से प्रश्न पूछा खाने पर, कहीं ऐसा तो नहीं साकार बाबा ने जैसे आखिरी दिन कहा था अच्छा बच्चों से विदाई, किसी ने समझा नहीं था, अब बाबा ने गुड नाइट कर दी और गया सदा के लिए। मैं सोचता हूँ जो लोग इस संसार में ज्यादा सोचते हैं वो कितने दुखी रहते हैं, जो नहीं सोचते वो आनंद से भरपूर हैं कि वाह बाबा ने 3-4 बार गुड नाइट की, भगवान गुड नाइट कर रहा है, आनंदित हो रहे थे सब भारत वाले, तो भारत वाले इतना ज्यादा नहीं सोचते। मैं देखता तो मस्त रहते हैं, जो देखा वो कम है क्या? तो ये भी एक बहुत सुंदर बात है, जो अति बुद्धिमान है वो अति परेशान भी रहते हैं, ज्यादा सोच सोच कर, जो बहुत सोचते हैं और भी कई चीजें, बाबा रिपीट क्यों कर रहा था, इसमें तो बहुतों को बहुत कुछ होने लगा था, इन सब के गुह्य रहस्य को भी जान लेना चाहिए हमें, अब रहस्य में नहीं बताऊंगा, लेकिन हम इस बात को आने वाले 3-4 सालों के लिए ध्यान दें, कुछ भी देखकर मन में संशय न उठे। अब निश्चय की परीक्षा के दिन आ गए हैं, जो पढ़ाई की है उसकी परीक्षा देने की घड़ियां पहुंच गई हैं, और बहुत लोग इस निश्चय में फेल भी होते हैं। गुह्यता से जान ले, अनुभवों से जान ले, अनुभव युक्त निश्चय हो, निश्चय का आधार हमारे सुंदर अनुभव हो जाए तो कभी भी संशय नहीं आएगा। संशय आया माना नहीं। और एक चीज बोलेंगे, बाबा के शब्द हैं, संशय माना बाबा से दूर, उसके छत्र छाया से बाहर निकल गए, उसके साथ को छोड़ दिया। संशय बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे अपने में संशय आते ही स्टूडेंट्स असफल हो जाते हैं, यहाँ बाबा में संशय आते ही हम बाबा से दूर हो जाते हैं, उसकी मदद से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सभी विशेष रूप से मैं कहूंगा, अगले 3 सालों के लिए अपने को बहुत निश्चय बुद्धि बनाकर रखें, और जो कुछ देखें, निश्चय जबरदस्ती तो नहीं होगा ना, जबरदस्ती तो नहीं होगा ना, ये चीज मीठी है खा रहे हो, मीठी तो नहीं लग रही, पर कह रहे नहीं मीठी है, मानना पड़ेगा श्रीमत है मीठी है, अब खा रहे हो तो फीकी है, श्रीमत है कि मीठी है। ये दुविधा बहुतों को होती है। इसलिए विवेक युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर हर चीज के रहस्य को समझते चले, आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, रहस्यों को समझते चले। जो जितने रहस्य युक्त रहेंगे, जिन्होंने ज्ञान को जितनी गुह्यता से समझ लिया होगा, वो उतने ही निश्चय बुद्धि रहेंगे, और निश्चय बुद्धि विजयन्ति, उनकी विजय होगी माया पर, उनकी विजय होगी परिस्थितियों पर, उनकी विजय होगी स्वयं पर, प्रकृति पर। तो बहुत बड़ी चीज है, हम स्वयं को संपूर्ण निश्चय बुद्धि की स्थिति में स्थिर रखें। एक सुंदर बात जो मुझे आप सबको याद दिलानी है, जो आपने कही, रोज सवेरे बाबा हमें दृष्टि देता है। अब जो पहले नंबर के पुरुषार्थी हैं और फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं, उन्हें क्या करना है, रोज बाबा से दृष्टि लेनी है और संसार को देनी है। पूर्वज बनकर संसार को दृष्टि देनी है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो इसको जानते हैं। तो इसके लिए अपने को सूक्ष्म लोक में ले चलेंगे, बाबा से बहुत अच्छा मिलन करेंगे, और वहीं पर बाबा की दृष्टि लेंगे, और वहीं से नीचे संसार को देंगे। ये सभी को और ध्यान देना है कि हमें संसार को बहुत बहुत सकास देनी है। सभी सवेरे और शाम 10-10 मिनट रख लें, हमें सकास देनी है। बाबा का एक महावाक्य याद कर लें, संसार के लोग भक्त जब दुखी होकर बाप को पुकारते हैं, तो बाप अपने बच्चों को याद करते हैं कि बच्चे इन्हें सकास दो। कितनी गुह्य बात है, कई सोचते हैं खुद क्यों नहीं दे देता, क्यों नहीं दे देता, बोलो। आपके पास सुंदर उत्तर इसका होना चाहिए, आत्माएं रिसीव नहीं करेंगी, पर क्यों? उत्तर मुरलियों में है, अभी अभी भी आया संडे को। तुम तने हो कल्प वृक्ष के, बीज से कुछ जाएगा, तने के माध्यम से पानी डाला, जड़ों में पहुंचा, और तने के माध्यम से पूरे कल्प वृक्ष में पहुंच गया। इसलिए बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों के बिना कुछ नहीं करता। कहता तो है कर सकता, पर मैं कहता हूं कर सकता की बात नहीं, ये सब थोड़ा सा ठीक नहीं, कुछ नहीं करता, अपने बच्चों के साथ सब कुछ करता है। फैमिली है ना उसकी, किसकी फैमिली है, हम सब माताओं को नशा नहीं चढ़ रहा, मेरी फैमिली तो अलग है, किसकी फैमिली है, हम सब भगवान की फैमिली। हमारा हेड कौन हो गया, स्वयं बाबा। तो बाबा अपने जो के साथ ही कार्य करता। हम तने हैं, हम जड़े हैं, हमारे माध्यम से ही सकाश जाएगी संसार को। तो बाप को जब भक्त पुकारते हैं, बाप अपने बच्चों को याद करते हैं, बच्चे इन्हें सकाश दो। तो मैं वो बात आपको याद दिला रहा था, 3-4 साल पहले बाबा ने कहा, 3 साल। संसार के लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि हमें सकाश मिल रही है, लेकिन अब अनुभव ये कराना है, ये सकाश कहां से आ रही है और कौन दे रहा है। उसी में बाबा ने कहा था, संसार की आत्मा इंतजार कर रही हैं, कौन विश्व के कल्याण के निमित्त बनते हैं। तो बनाएगा ना बाबा आत्माओं को, तो जड़ों को तने के माध्यम से काम होगा ना। बीज तो गुप्त हो जाता है ना, बीज तो खत्म भी हो जाता है। जब पेड़ बड़ा हो गया तो बीज रहा क्या? खोद के बीज को निकालें, होगा ही नहीं। जड़े और तना, तो बीज ने अपना काम पूरा कर दिया, फिर काम करना है तनों को, तने को और जड़ों को। तो हम सभी सकाश देने की महान सेवा पर भी ध्यान दें। है? कभी भी भाई लोग पहाड़ी पे जाके बैठ जाओ, दिन में योग अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर दुख हरता हूँ, योग कर लो। और यहाँ से मस्तक से किरणें निकलकर फैल रही हैं, फोकस पिचकारी की तरह जा रही हैं, 10 मिनट ऊपर से आ रही हैं, यहाँ से फैल रही हैं। स्वयं को बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो चीज हम दूसरों को देंगे उसकी कई गुना गुड फीलिंग हमें स्वयं को होगी। शांति का दान देंगे तो हमारे अंदर शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी। प्योर वाइब्रेशंस देंगे, हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। इस पर बहुत सबको ध्यान देना है। तो बाबा से दृष्टि लेनी है और संसार को देनी है। क्षमा भी कर दें सबको, आज ही कर देना सोने से पहले और सवेरे उठकर, जो भी चीज मन पे दबाव कर रही हो। बहुतों के मन पे दबाव हैं या नहीं? माताओं पे ज्यादा या भाइयों पे? सुशील क्या कह रहा? बच्चों के माँ बाप पे, आजकल बच्चों पे भी है। कुमारों पे है दबाव? कुमार थोड़े हल्के रहते हैं, मस्त रहते हैं। बहुत चीजें निगेटिव मन को भटका रही हैं। ऐसे बहुत सारे केस आजकल आने लगे हैं कि हम बहुत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं हमें भी पता नहीं, क्यों सोच रहे हैं ये भी नहीं पता, और सोच रहे हैं, इससे बचना चाहते हैं। तो बाबा ने जो श्रीमत हमें दी हैं, देखो क्या क्या कहा है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो, एसडीडी होने का अभ्यास करो, स्वमान का अभ्यास करो, बाबा से रूढ़िहान करो। ये चीजें हैं स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करने की। ये जो संकल्पों की स्पीड आजकल बढ़ती जा रही है, इससे अगर बचना है तो ये अभ्यास करने पड़ेंगे। इसके बिना ये स्पीड कम नहीं होगी। माताओं की क्या समस्या है, मुझे फोन भी करेंगी, बहुत संकल्प चल रहे, बहुत संकल्प चल रहे। मैं 1-2 विधि बताऊंगा, वो नहीं सुनेंगी, बहुत संकल्प चल रहे भाई जी क्या करूं। फिर मैं दूसरी विधि बताऊंगा, वो भी नहीं सुनेगी, मुझे बहुत संकल्प चलते, मैं तो बहुत परेशान हूँ, रुकते ही नहीं है, योग लगता ही नहीं है, क्या करूं। मैंने कहा मेरी सुन लो, मैं सुन लिया आपकी बहुत। सब चुप, अच्छा बताओ बताओ क्या बताया आपने। मैंने कहा कागज पेन ले लो जरा और लिखो। फिर एक एक चीज लिखानी पड़ती। अगर मैं उसे कहूं तुम्हें लिखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो वो कहती मैं आगे क्या बताया था मास्टर, आगे क्या था। बोली माताएं है ना, हमें व्यर्थ से और परेशान करने वाले संकल्पों से मुक्त रहने के लिए स्वमान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, अशरीरीपन, परिवारों में रहते भी आत्मिक भाव, ये सब करना होगा। इसके अलावा कोई सोचे कि कोई इंजेक्शन लगा दें और व्यर्थ खत्म हो जाए, इंजेक्शन अभी डॉक्टरों ने ऐसा निकाला नहीं है, सबको पता होना चाहिए, ऐसा कोई इंजेक्शन अभी दुकानों पे आया नहीं है, हमें खुद करना पड़ेगा। तो इस मुरली से हम पांच बातें ले लेते हैं, रिपीट करो। सवेरे रोज दृष्टि लेंगे, संसार को दृष्टि देंगे, एक बात करना है ये सबको। देना मुख्य सेवा है, एक बात। अब पांच बातें कर लेते हैं। दूसरी बात, बातों को पकड़ेंगे नहीं। तीसरी बात बोलो, जो क्लास करा ली उस पे से निकालो पांच। प्लान करेंगे अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, बाबा से अपनापन बढ़ाएंगे, और इसका तरीका है कि बाबा से कोई नाता जोड़ लिया जाए। नातों में अपनापन होता है ना, कोई ऐसे ही व्यक्ति मिल जाए उससे हमें अपनापन नहीं होगा। प्यार हो सकता है, अपनापन अलग चीज है। और बाबा के उपकारों को याद कर उसके प्यार में मगन। आज रात को आप ये काम करके सो, हर एक पर बाबा ने अलग अलग उपकार किए हैं, हर एक पर, और वो सबको पता है। पता है या नहीं, कितनी बार हमें बाबा ने नया जीवन दिया होगा, हमारी गलतियों को क्षमा किया होगा, हमें दृष्टि दी होगी यहाँ बैठकर भी और ऊपर से भी, हमारी समस्याओं को हमारी जानकारी के बिना ही नष्ट कर दिया होगा, हमारे परिवार में कई चीजें दी होंगी। इसके अलावा बड़ी बातें, वरदान मिले हैं उससे, सद्ज्ञान मिला है उससे, शक्तियां मिली है। हमें बोलना किसने सिखाया? कौन जानता था बोलना? जानते ही नहीं थे, माताएं भाषण करने लगे। बाबा ने सिखाया ना, जीवन जीना सिखाया है। परम सद्गुरु बनकर भगवान हमारे घर में आ गया है, कितने उपकार हैं उसके। हमें सत्य राह दिखा दी, सत्य ज्ञान देना कोई छोटा उपकार नहीं है, ये उनसे पूछो जो सत्य के लिए भटक रहे हैं। कह दिया मेरी गोद में सो जाया करो, मैं ही सवेरे उठाऊंगा, उठते ही प्रभु मिलन, सुखी जीवन जीना सिखा दिया। ये सब बहुत बड़े बड़े उपकार हैं, और प्रैक्टिकल रोज के जीवन में हो जाते हैं। किसी की बीमारी नष्ट हो जाती है, किसी के बिजनेस में पैसे हुए फंसे हुए पैसे वापस आ जाते हैं, किसी के ऊपर कोई बड़ा विघ्न हो भूत प्रेत का वो मिट गया। हर एक के ऊपर अलग अलग उपकार भी बाबा के हुए हैं। असंभव बातों को कहीं बाबा ने संभव करा दिया। हाँ, कईयों के केस खत्म हो गए हैं। तो एक 5 पॉइंट प्लान सभी इस मुरली से अपने पुरुषार्थ का करेंगे, और उसको रोज सवेरे जैसे बाबा ने कह दिया, योग करने के बाद उस पर एक नजर डालेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, फिर से अपने को उमंग दिलाएंगे, मुझे ये करना है, ये करना है। और किसी को कुछ याद आ रही मुरली की बात है? हाँ नहीं, बाबा की मुरली कल की बात याद आ रही किसी को? बेफिकर बात सही छूट गई थी। इस पर बहुत ध्यान, ये बाबा का प्यार है कि बच्चों के बिना बाबा को चैन नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। बेफिकर बादशाह बहुत ऊंची स्थिति है, और ये इसके लिए कई पुरुषार्थ हमें करने होते हैं। दो बातें तो बाबा ने मुरलियों में सुना ही दी, क्या थे? मेरे को तेरे में बदल दो, और फिकर देकर फकुर ले लो। फकुर माना नशा, कौन मेरे साथ है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, किसने मेरी चिंताएं हर ली हैं, कौन मेरा सहारा बना है, कौन मेरी जीवन नैया का खिवैया है, इसका नशा हो जाए। दूसरी बात, तीसरी, कईयों को छोटी छोटी बातों में चिंता करने की आदत भी ज्यादा होती है, उसको निकाल दें। जरा सा कुछ हो गया और चिंता। जैसे आज का बताऊं, पूना से एक भाई से मुझे फोन करवाया, पूना की पार्टी आई हुई है, उसको है कैंसर। उसको बताया नहीं गया था तुम्हें कैंसर है, लोग उससे मिलने जाते थे, वो भी जाते थे जो उसके अच्छे दोस्त नहीं थे। वो सोचता था सब क्यों आ रहे मेरे पास, कुछ गड़बड़ है क्या। आखिर उसे पता चला तुम्हें कैंसर है, सुनते ही उसकी आवाज बता रही थी। मैंने कहा तुम्हें किसी डॉक्टर ने बता दिया है शायद कि 6 मास ही जियोगे। हाँ बता दिया है, 3 मास ही जीना है मुझे। मैंने उसे कहा तो 3 मास का आनंद नहीं ले सकते। आनंद कैसे लूं, मरना है अब तो। मैंने कहा 3 मास तो है ना तुम्हारे पास, वो कहाँ चले गए 3 मास। और एक ही रहस्य है जो मैंने उसके सामने रखा, तुम अगर सच्चे मन से संकल्प कर लो मुझे 20 साल जीना है, तुम 20 साल ही जियोगे। तुम यदि सच्चे मन से संकल्प कर दो मैं ठीक होने जा रहा हूँ, डॉक्टरों की बातें झूठी सिद्ध हो जाएंगी। बहुत जगह सिद्ध हो चुकी हैं, बहुत जगह हो गई, मुझे मैसेज आते हैं डॉक्टर ने ये कहा था बिल्कुल ठीक हो गया है। उसको मैंने खुशी दिलाई, मेरे बोलते बोलते मैं सोचा इसको मैं टाइम दे दूं थोड़ा 5-7 मिनट, उसको खुशी दिलाई तो देखा थोड़ी रौनक आ गई। मैं जी सकता हूँ, जिएंगे बिल्कुल जिएंगे, कहो ना बाबा मुझे नया जीवन देगा। तो कईयों में क्या, ये तो खैर बड़ी बात कैंसर, तो कईयों में छोटी बातों की भी चिंता करने का संस्कार होता है, इसको चेंज करेंगे। चौथी बात, लंबे समय से जो साक्षी भाव की प्रैक्टिस करेंगे, साक्षी, और इसमें एक ही बात याद रखेंगे, भगवान वाच, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। सबसे टॉप की बात है ये, विनाश का खेल होगा, तांडव नृत्य, संसार में क्राई क्राई चिल्लाट के अलावा कुछ नहीं होगा, और बाबा ऊपर से साक्षी होके देखेगा। कितनी बार देखा उसने, अनेकों को शब्दों में डाल दो जरा, कितनी बार देखा, समझो करोड़ों बार, अनगिनत से समझ में नहीं आता ना, करोड़ बार देखा है। तो जो चीज 10-20 बार भी देखी हो उसे फिर देखना कैसा लगता है, भाई ये तो होना ही है ना। 20 बार आपने कोई चीज देख ली, किसी बार देखेंगे तो कैसा लगेगा, ये तो होना ही है ना। ऐसे फिल्म एक देखा है आप 2.5 घंटे की, 10 बार देखा है तो बताते रहेंगे ना फिर 11वीं बार अपने साथियों को, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, होगा नहीं। बाबा भी साक्षी रहता है, उसने हजारों लाखों करोड़ों बार देखा है। ऐसे विनाश हुआ, स्वर्णिम युग आ गया, खेल करते करते बच्चे अंत में पहुंच गए, फिर मैं आ गया, इन्हें याद दिलाया तुम ये नहीं हो, अरे तुम तो वो हो, याद करो तुम ये नहीं हो। इन्हें धीरे धीरे याद आया, अब इनको लेके चलता हूँ घर। कितनी बार किया उसने खेल, करोड़ों बार। जैसे वो साक्षी है वैसे ही यदि हम भी साक्षी हो जाएं, तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे बाप समान, और फिर बनेंगे बेफिकर बादशाह। कि जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, हमने लाखों बार देखा है उसको, यही तो हुआ था। हम और आप सब यहाँ कितनी बार बैठे थे, करोड़ों बार। अब जरा इसको सोच के देखो, ऐसे ही हम कितनी बार बैठे थे, ये ठंड कितनी बार हुई थी, तो कैसा लगेगा, ये तो हुई थी और चली गई थी, फिर चल जाएगी। देखो जो यहाँ जितने समय से रहते हैं उन्होंने देखा है ना, हर साल ऐसी ठंड आती है, पिछले बार -9 तक गई, खत्म हो गई। तो एक 5 पॉइंट सुंदर प्लान बनाएंगे और बाबा के सामने कुछ करके जाएंगे अगली बार। ओम शांति।
ओम शांति। ये स्वयं दादी प्रकाशमणि जी ने लिखवाया है प्रकाश स्तंभ में। तू तूने प्यार से पाला, तू है मेरा दिल वाला, तू मेरा बाबा है, मेरा प्यारा शुबाबा है, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, संसार है तू मेरा, तू मेरा बाबा है, मेरा प्यारा शुबाबा है। माताओं को हर है लिया, बहनों को वर है लिया, माताओं को हर है लिया, बहनों को वर है लिया, भाइयों को लूट लिया, बच्चों को चूम लिया, भाइयों को दिल है दिया, बच्चों को चूम लिया, साजन है मीत मेरा, मेरा गीत है प्रीत मेरा, साजन है गीत मेरा, मेरा मीत है प्रीत मेरा, तू मेरा बाबा है, मेरा प्यारा शुबाबा है, तूने प्यार से पाला, तू है मेरा दिल वाला, मेरा नूर भी है तू, गुरूर भी है तू, मेरा नूर भी है तू, गुरूर भी है तू, सुरूर भी है तू, मेरा सूर्य है अब तू, सुरूर भी है तू, मेरा सूर्य है अब तू, बाहों में भर है लिया, नैनों से वर है दिया, बाहों में भर है लिया, नैनों से वर है दिया, सांसों से सींच लिया, आँखों से खींच लिया, सांसों से सींच लिया, नैनों से खींच लिया, तू मिला है संगम में, सांसों के सरगम में, तू मिला है संगम में, सांसों के सरगम में, दादियों के अंग संग में, गुलजार के बंधन में, दादियों के अंग संग में, गुलजार के बंधन में, फरिश्तों की महफिल में, तू मिला है संगम में, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, संसार है तू मेरा, तू मेरा बाबा है, मेरा प्यारा शुबाबा है, तूने प्यार से पाला, तू है मेरा दिल